हम सभी का सौभाग्य है आज हम सभी के बीच मधुबन से खास आदरणीय रामनाथ भाई जी हमारे बीच उपस्थित हैं। हम भाई साहब का एक हाथ की ताली से स्वागत करते हैं। थैंक यू। अभी हम सुनते हैं आदरणीय भाई साहब से ज्ञान के अमूल्य रत्न।
ओम शांति। आज बाबा की मुरली जो सुनी याद है, आज बाबा ने बहुत अच्छी बात कहा कि बैटरी डिस्चार्ज हो गई है। कैसे पता चलेगा? आत्मा का पावर कम हो गया। जैसे टॉर्च में बाबा ने उदाहरण दिया, टॉर्च में बैटरी डिम हो जाती है तो पता चलता है, बारीक लाइट लेती है। तो इस शरीर के अंदर जो आत्मा है उसकी पावर कम हो गई, कैसे पता चलेगा? तो एक आता है कि पता चलता है पहले कि आत्मा डिम हो गई, उसके अंदर गलत विचार आने लगे। आत्मा पावरफुल है, अच्छे है, तो शरीर के भान, शरीर के गुणों को धारण करने लगता है, अपनापन भूल जाता है। उससे भी रात कहेंगे कि आत्मा, मैं आत्मा हूं, ये भूल गया, शरीर समझने लगे। आत्मा जैसे पावर खत्म होती जाती है तो आत्म अभिमानी से देह अभिमान में आए, तो देह अभिमान में आए तो देह के गुण यूज होने लगे। तो धीरे 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 पता चल गया एकदम अंत में। अब भी हमको कैसा पता चलता है कि हमारे स्वप्न बताते हैं कि आत्मा ने देह अभिमान में आकर कितने विकर्म किया हुआ है, कि पतित आत्मा बन गई। कैसे पता चला? मन में गलत विचार आते हैं, कहां से आए वो? तो हमारे कर्म। आत्मा जैसे शरीर में आई, एक ही शब्द अगर हमको अच्छी तरह से याद है, सारा ज्ञान का निचोड़, तो मनुष्य के जीवन में कभी दुख नहीं, न बीमारी नहीं, सदा सुखी रह सकते हैं। लेकिन एक बात अच्छी तरह से बुद्धि में फिट होना चाहिए, वो कौन सी? सारा ज्ञान का निचोड़ उसमें अंदर है कि मैं आत्मा, मैंने इस शरीर में जन्म लिया है, और इस शरीर में रहते हुए अंतिम श्वास तक इस शरीर के द्वारा मैं कुछ भी करता हूं वो मेरे अंदर रिकॉर्ड होता है। कुछ भी करो, अच्छा करो गलत करो, जो भी कर्म किया वो मेरे अंदर संस्कार बनता है, उसी के अनुसार मेरे जीवन में दुख सुख बीमारी जो कुछ कहते हो वो आने का कारण क्या है? पता नहीं, भगवान ऐसा करता है, ड्रामा में मेरा पार्ट है, मेरा कर्म बंधन है, ऐसे कुछ न कुछ नाम होता है। तो ये अगर समझ लिया, हां, तो कुछ भी होता है तो उसको मनुष्य आत्मा स्वीकार करता है, मेरे कर्मों का फल है, दूसरों पर डालता नहीं, इसने ऐसा किया, इसने ऐसा किया, इसके कारण हुआ, इसके कारण हुआ। नहीं तो हम हर कर्म के लिए दूसरों को दोषी ठहराते हैं, अपने ऊपर नहीं लेते हैं। तो अगर कुछ भी हमारे जीवन में होता है तो मैं जिम्मेवार हूं, मेरे कर्मों का फल है ये। तो ये कैसे पता चला मेरे कर्म? स्वप्न बताते हैं, मन में गलत विचार आते हैं, नहीं तो मन सच है, शांत है। तब बाबा ने कहा, बच्चे इसको मिटाने के लिए जैसे आसमान में तारे खड़े हैं, कहीं चिपके नहीं है, तो ऐसे आत्मा को भी अपने घर में, वहां सतो प्रधान स्वच्छ वातावरण है, सर्वशक्तिवान बाप रहता है जो सर्वशक्तियों का सागर है, जो सर्वशक्तिवान है वहां चारों तरफ कैसे वातावरण होगा? उसी प्रकार का वातावरण भी होगा ना, जैसा व्यक्ति वैसा वातावरण, जैसा स्थिति, जैसी आपकी स्थिति है वैसे आपका प्रबंध होता है ना। तो व्यक्ति कैसा कौन है? सर्वशक्तिवान है। तब बाबा ने कहा, बाप के साथ रहते हो, सन्मुख आते हो, जैसे अभी भी देखो सूर्य के सामने खड़े हो जाओ 5 मिनट, सूर्य की किरणें शरीर पर पड़ती है, आप चाहो या नहीं चाहो, अपने आप सूर्य अपना काम करता है, पसीना निकालता है। इस शरीर की गंदगी निकालना चाहते हो तो सूर्य के सामने खड़ा होना पड़ता है। तो यहां भी सर्वशक्तिवान शिव बाबा के सामने। तो बाबा ने कहा देख लो हम कितना समय बाप के सन्मुख रहते हैं, बाप के संग में रहते हैं, उस वातावरण में रहते थे। अभी भी आप देख लो योग में बैठे थे तो मन बुद्धि कहां थी पूछ लो, परमधाम में थी। तो वहां चार्ज होता है, बाकी भी कुछ करते हैं हम तो चार्ज नहीं होता है। आप कहेंगे अच्छे विचार कर रहे थे, ठीक है, तो चार्ज नहीं हो रहा ना डिस्चार्ज हो रहा, अच्छे मन है कि चल रहा है, अच्छे विचार उसी में है। तो चार्ज करना है तो शक्ति चाहिए। तो बाबा ने कहा कि बुद्धि, मन और बुद्धि, ये दोनों दो तार जोड़ते हो तो करंट आता है। देखना आत्मा को बैटरी चार्ज होनी चाहिए तो करंट चाहिए, दोनों तार चाहिए। एक तार जोड़ो तो चार्ज नहीं होता है। तो मन योग में बैठते मन बुद्धि परमधाम तक जाना चाहिए। कैसे जाएंगे, अपने आप जाएंगे। शरीर के अंदर रहते हुए शरीर का कितना कर्म बंधन है, कहां कहां बुद्धि मन जुड़ा हुआ है, तो ऐसा तो नहीं फ्री एकदम ऊपर जाएगा। जो समझते हैं सारा दिन में अटेंशन है, अच्छे ज्ञान का चिंतन चलता है। तब बाबा ने कहा कल कहा था निरंतर आत्म अभिमानी बनो, निरंतर बाबा की याद। कैसे होगा निरंतर, हाँ अलग अलग तरीका है। तो सवेरे उठते ही अगर आत्मा समझकर शिव बाबा को याद करते हो तो बैठते ही, नहीं तो हर सेकंड मैं माना शरीर का भान रहता है, शरीर की स्मृति रहती है। कम से कम, क्योंकि सारा दिन शरीर को तो उपयोग करते हैं, कम से कम जब बैठते हो तो अपने स्मृति को जागृत करो कि मैं कौन, नहीं तो मैं माना शरीर, शरीर है, शरीर के जहां जहां संबंध है वो स्मृतियां जागृत होती है। तब हम कहते हैं योग में बैठते ही व्यर्थ विचार आते हैं, पुरानी बातें याद आती है, अभी की नहीं पुरानी पुरानी बात आ जाती है, क्योंकि शरीर में है, अपने को शरीर समझते हो, शरीर की स्मृति है, शरीर का कनेक्शन कहां कहां जुड़ा है, तो उसका स्मृति जागृत होंगी क्योंकि बुद्धि खाली है। बहुत बाबा के बच्चे योग में बैठते हैं मन चलता है, मन में अच्छे विचार करते हैं, बुद्धि खाली रहती है। तो बुद्धि के अंदर पुरानी बातें स्मृतियां जागृत होती है, न माया न व्यर्थ। नाम देते हैं माया, योग में विघन डालती है, व्यर्थ विचार आते हैं। कहां से आए वो, चारों तरफ सभी योग में बैठते हैं और कोई कुछ करते नहीं है, ये कहां से है, हमारे अंदर ही हमारी पुरानी स्मृतियां याद आती है, किसी व्यक्ति की, किसी ने कुछ कहा, क्योंकि बुद्धि के अंदर स्मृति है भरा हुआ अंदर, वो जागृत होता है। इसलिए बाबा ने कहा मन और बुद्धि दोनों को पहले एक करो, अशरीरी बनो, एकाग्र हो जाओ, फिर मेरे से जोड़ दो, तो मेरे से बात करो, परमधाम तक आ जाओ। नहीं तो यहां बैठे मन में विचार करते करते दूसरे बुद्धि के अंदर जो स्मृति है वो बीच में विघन डालती है, बीच में जागृत हो जाती, याद आता अरे ये काम करना था, इसने ऐसे कहा था। इसलिए कहा ज्ञान युक्त ध्यान है हमारा, निल नहीं है, खाली होके ऐसे बैठे रहेंगे तो अपने आप बाबा योग लगाएगा, बाबा तार खींचेगा, है ना, बाबा मदद करेगा, नहीं निल होके नहीं। तो ये यात्रा का, यात्रा में दोनों पांव से चलते हैं ना, यात्रा है, चलना है। तो कौन, एक शरीर की यात्रा और एक आत्मा की यात्रा, ये रूहानी यात्रा है। आत्मा के पास भी दो पांव है, एक मन है और एक बुद्धि, ये दोनों शक्ति अगर यहां से प्रश्न करते जाओ तो ज्ञान का उपयोग होना चाहिए। नहीं तो हम ज्ञान क्यों सुने, समझ लिया आत्मा है, शिव बाबा को याद करना है, जैसे भक्ति में राम राम ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय करते रहते हैं, भगवान को याद कर रहे, भगवान का स्मरण कर रहे। तो यहां जो ज्ञान सुना हुआ है तो उसका उपयोग करना चाहिए। तो यहां से प्रश्न पूछते जाओ, मैं कौन, मेरा रूप, मेरे गुण, आत्मा को जागृत करो, कहा आत्मिक स्मृति जागृत करनी पड़ती है। तो मैं कहां से, सूक्ष्मतन में, सूक्ष्मतन में बाबा से रूरियान करो, कोई भी कमी कमजोरी है। कल बाबा ने बताया था बहुत अच्छी एक बात, बच्चे एक गुण धारण करो, कौन सा है वो? हाँ देखो भाई जी को याद है, कल बाबा ने कहा था बच्चे एक गुण धारण करो, कौन सा वो? वो गुण किसी की कमजोरी देखी दिखाई देता है। कलयुग है, अंतिम समय है, हमारा एक ही हाथ देखो, एक छोटी अंगुली है, एक मोटी है, एक लंबी है, तो हरेक का अपना अपना पार्ट है, कोई कैसा चलता है। बाबा के बच्चे है, ज्ञान में भी चलते हैं, किसकी चलन, किसकी बोल, किसका व्यवहार, किसकी दृष्टि, जैसे आज बाबा ने कहा दृष्टि कैसी होती है, तो हरेक अपने स्वभाव संस्कार के अनुसार है। जैसी आत्मा है, पवित्र है, कोई ऐसे कर्म नहीं किया है, उसकी दृष्टि इधर उधर जाएंगी नहीं, उसके मुख से ऐसे बोल निकलेंगे नहीं, उससे उसकी ऐसी चलन होंगी नहीं, क्योंकि दैवी गुण है, आत्मा के अंदर शक्ति है, शक्ति है तो आत्मा चलाती शरीर को। अभी आत्मा इतनी कमजोर है, शक्ति नहीं है, शरीर के गुण चलाते हैं, शरीर चलता है, तो आत्मा की स्मृति नहीं है, तो शरीर के गुण, शरीर को देखते ही शरीर खींचता है, किसी को देखते आकर्षण होता है, क्योंकि शरीर शरीर को खींचता है। अगर आत्मिक स्मृति है तो पता है नहीं खींचता है, पता है शरीर। जैसे बाबा ने उदाहरण दिया, आज परिवार में भाई बहन सब साथ में रहते हैं ना, तो वहां अपनापन है। तब बाबा ने कहा आज यहां भी हम कौन है? ईश्वरीय संतान है, ब्रह्मा ब्रह्मा के कौन? ब्राह्मण है, तो आपस में कौन हो गए? एक परिवार है ना, एक परिवार एक बाप, तो एक ही परिवार के अंदर ये भी किसी को देखते ये हमारा भाई है, ये हमारी बहन है। अगर ये स्मृति है, स्मृति नहीं रहती है, ये दूसरा है। जैसे देख लो आप ट्रेन में जाते हो कहीं, तो एक सीट पर तीनों भाई बैठे हैं, अगर कोई हिंदी में पूछता भाई दी छोटा जगह दे दो, तो क्या कहेंगे आप? जगह नहीं है, आगे इधर उधर बैठो, तीनों बैठे हैं, जगह ही नहीं है। अगर वो देखता है कि ये तीनों भाई पंजाबी में बोलते हैं, मराठी में बोलते हैं, तो वो भी आपको मराठी में अपनी भाषा में बोलेगा, तो क्या करेंगे? वही भाई वही है, पहले उसने हिंदी में बोला जनरल भाषा, फिर देखा ये आपस में मराठी में बोलते हैं, अगर आपकी भाषा में अगर उसने बोला तो क्या करेंगे? हाँ, पहले वो अपना नहीं था, दूसरा था, है ना, वो दूसरा था, व्यक्ति वही, कपड़े वही, वही सामने है, पहले वो दूसरा था, जब उसने अपनी भाषा में बोला तो अपना हो गया। अरे हमारा है, हमारे गांव से आया, जगह नहीं होते हुए भी उसको जगह देंगे आप, एडजस्ट करेंगे, है ना, वो पहले कर सकते थे, पहले वो दूसरा। यहां भी संसार में कोई किसने कैसे कपड़े पहने, कोई काला कोई गोरा कोई लंगड़ा, किसने कैसे कपड़े पहने, किसने कैसे है, नहीं तो यहां सफेद पहने हैं, बैच लगा है तो कहेंगे हमारा है, अगर बैच नहीं पहना, सफेद कपड़ा नहीं पहना है तो दूसरा है ना, तो उसको सहयोग नहीं देंगे, हाँ ये हमारा है, ब्रह्मा कुमार है, थोड़ा सा देंगे। तो उससे भी बाबा कहते और आगे जाओ कि कोई भी हो, सभी के शरीर में जो आत्मा है, रावण का जो आत्मा होती है, रावण का तो कोई बच्चा नहीं, हर एक परम धाम से ही आया था, हर एक शिव बाबा का ही बच्चा है, कोई जानता है कोई नहीं जानता है, ये अगर एक स्मृति में रहे, हरेक के अंदर आत्मा है और वो परम धाम से आए, चाहे कोई कैसा भी हो। उसको गीता में भी कहा अधम ते अधम महापापी है, बहुत खराब भी है तो क्या करना चाहिए? सजा देना चाहिए, उसके लिए गलत सोचना चाहिए, हाँ होत निकल सकती है नहीं, ये कौन कर सकता है? करना चाहिए, दुनिया क्या करती है, किसी ने कुछ किया तुरंत और सब इकट्ठा होकर मानने लगेंगे, है ना, तो शुभ भावना कौन रख सकता है? जिसके अंदर आध्यात्मिक ज्ञान है, सभी को रखना चाहिए, सभी नहीं, आत्मिक स्मृति चाहिए। तो आत्मिक स्मृति अगर है तो उसको बोलता है ये भी हमारा, दया धर्म का मूल है, दया क्षमा, अपने आप शुभ भावना आएंगी, किसके लिए? आत्मा के लिए आएंगी, शरीर की स्मृति है नहीं आ सकती। तब बाबा ने कहा कि बच्चे किसी का देखा तो भी क्या करो, वर्णन नहीं करो, एक दूसरों को बताओ नहीं, तो फैलाओ नहीं, तो क्या करे, तो समा भी समाएंगे तो हार्ट अटैक हो जाएगा, अंदर लगेंगे तो अंदर ही रहेगा, जमा होता जाएगा, तो क्या करे। एक सोल्यूशन और बताओ, वो बाबा ने अभी नहीं पहले बताया है। तो तब बाबा ने कहा था, बच्चे उल्टी कहां करेंगे, मां बाप के गोदी में करो, इधर उधर नहीं। हाँ, तो अगर किसी का आपने अवगुण देखा सुना, आपको पता चला, किसी को पता नहीं, तो आप उन हरेक के मां बाप है, तो बाबा के कमरे में बैठो, बाबा ये आपका बच्चा ऐसा करता है, आपने ध्यान देना चाहिए, आपके बच्चे हैं। तो बाबा ने कहा मैं बैठा हूं, मुझे बताओ। फिर भी बाबा ने एक सॉल्यूशन दिया कि बच्चे आपको कुछ ने वॉचमैन तो नहीं बनाया, कौन क्या करता है देखते रहो। कहा किसी को कौन क्या, जो करता है हर एक का अपना ड्रामा, हर एक का अपना पार्ट, जो करेगा वो पाएगा। नहीं बाबा, अपना परिवार है, परिवार में कोई गलत कुछ करता है तो कुछ होना बताना चाहिए, विचार चलता है, अपना है। फिर बाबा ने कहा बच्चे क्या आप उसको परिवर्तन कर सकते हो, आपने उसको कहा तो वो मानेगा, तो क्या करना चाहिए, और एक आगे बढ़ो। अगर आपने देखा सुना तो क्या करेंगे आप, आपका है भाई है, बड़ों को बताया, बड़ों को भी बताया, वो भी सुनते नहीं, ठीक है आपको क्या है, कोई हर्जा नहीं, ध्यान नहीं दिया, फिर भी आपके अंदर विचार चलता है, और एक सॉल्यूशन बताओ। बाबा को बताया, बाबा ने भी कुछ किया नहीं, बड़ों को भी बताया, और आगे बढ़ो, मनसा सेवा करो, हाँ मन के द्वारा शुभ संकल्प दे दो। और एक बाबा ने बहुत अच्छी युक्ति बताया, बाबा ने कहा बच्चे अगर आपके अंदर हिम्मत है, आप समझते हो कि मैं इसको समझाऊ तो ये सुनेगा मानेगा, तो आपको विश्वास अगर है और आप उसको परिवर्तन करना चाहते हो, तो पहले उसकी विधि बताया, पहले उसकी महिमा करो। अरे आप तो बहुत अच्छे हो बाबा के बच्चे, रोज ज्ञान सुनते हो, योग करते हो, उसकी महिमा करो। फिर उसको बताओ भाई जी आपके कपड़े पर इधर काला दाग लगा, आपको दिखाई नहीं देता, मुझे दिखाई देता है, मैं साफ करूं। अगर वो व्यक्ति सभ्य है, सॉफ्ट है, अच्छा है, कहते भाई जी थैंक यू मैं निकाल देता हूं। अगर वो थोड़ा कठोर है, बाबा के बच्चों के अंदर भी थोड़े कठोर है, अभिमानी है, मेरे कपड़े पर दाग लगा आपको क्या तकलीफ है, मेरे कपड़े ना आपको तो नहीं लगा ना, आपको किसने कहा देखो, हाँ ऐसा भी बोलेगा, ऐसे भी व्यक्ति होगा, तो वो भी सुनने की आपकी हिम्मत चाहिए। हम औरों को बचाने जाएंगे, सुधारने जाने के लिए भी सुधारते हैं, सुधारना चाहते भी है, लेकिन आपके पास वो जो कुछ कहेगा उसको सुनने की भी हिम्मत चाहिए, है ना। वो बोलेगा अगर अच्छा व्यक्ति है, सभ्य है, तो भाई जी सॉरी कहेगा, मैंने पता है मुझको, मैं साफ कर लूंगा, आपको नहीं मैं करता हूं, नहीं मेरे कपड़े को काला लगा, आपको किसने कहा देखने, आपको क्या तकलीफ है, ऐसा भी व्यक्ति मिलेगा, सभी प्रकार के है, तो वहां आपके अंदर हिम्मत चाहिए। समझो, ओके, मेरा काम था बताना, अपना परिवार समझकर आप शुभ भावना से इशारा दे दो, लेकिन पहले उसकी महिमा करो, नहीं तो आज कोई किसी का कुछ सुनना नहीं चाहता है, हर एक के अंदर है, मैं सब कुछ जानता हूं, है ना, अहम रहता है, तो बाबा ने उसकी भी विधि बताया है। समझ में आया, कैसे समझाना है, कैसे मदद भी करना है, वो भी बताया, इसलिए कल ये बताया था। तो आज बाबा ने कहा कि ऐसे आप बैठो, बैठकर ये क्यों हो रहा है कुछ ना कुछ गलती, कि आत्मा के पास ताकत नहीं है, है ना, ज्ञान सुन रहे, समझते भी है, समय परिस्थिति आती है तो संस्कार काम करते हैं, फिर मनुष्य पश्चाताप होता है, अरे क्या हुआ, लेकिन कर्म होने के बाद तो क्या करना चाहिए। तब बाबा ने कहा बच्चे योग के बिगर, याद के बिगर कुछ होने वाला नहीं, पावन नहीं बन सकते हो, और पावन बनने के बिगर वापस घर परमधाम जा नहीं सकते हो, तो क्या करना चाहिए, निरंतर बाबा को याद कैसे करें, सवेरे करेंगे, शाम को करेंगे, सारा दिन, हाँ उसकी भी विधि चाहिए। सवेरे बाबा को याद किया, आत्मा समझ के परमात्मा से बात किया, शिव बाबा से, परम सुख सोतन में गए, परम धाम तक गए। तो ये बैटरी चार्ज करने के लिए, फिर सारा दिन में मेंटेन करना पड़ता है। मुरली क्लास में आए, मुरली सुनी, मुरली की एक पॉइंट सुनते हैं हम, वो किसी की याद नहीं रहता है, बुद्धि इतनी स्वच्छ नहीं है। तो एक पॉइंट लिख करके भाई अपने जेब में रखो, माताएं लिख करके अपने पास रखो। जैसे शरीर को 3 दफा खाना खिलाते हो, आत्मा को, आत्मा को भी बार बार ज्ञान सुनाना चाहिए। सवेरे सारा दिन बिजी है, बिजी भी रहो, खाना खाते खाना खाने बैठे हो, 2 हाथ है, 1 हाथ तो नहीं है, 1 हाथ खाना खा रहा है, शरीर को खिला रहा है, 1 हाथ आत्मा को, एक ही पॉइंट, तो उसका विचार चलेगा। बाबा ने ये कहा सवेरे दिन में शाम को, सबसे सहज। फिर सारा दिन में अगर आपको अक्से अपने आप को पढ़ाते हो तो ज्ञान बुद्धि में स्मृति में जागृत है, नहीं तो सवेरे सुना था 1 घंटे के बाद भूल गया। नाश्ता करने बैठते हो, अपने आप को पढ़ाओ। फिर और भी जागृत रखना चाहिए, सारा दिन किसी के संबंध संपर्क में आते हो, हाँ बात करो, संसार की इधर उधर की बात नहीं करो। हाँ आज बाबा ने ये कहा था, आप होकर के अच्छी बात सुनाएंगे तो उसके मुख से भी एक निकलेगा, दूसरों के मुख से भी मन स्मृति से भी ज्ञान रतन निकालना, ये भी आपका पावर है ना। आप अगर गलत सोचते हो, आपका संकल्प औरों को पहुंचता है, उनके अंदर भी संकल्प उठता है। तब बाबा ने कल कहा था, आप परसों, अगर मन में गलत संकल्प करना भी, ये भी हिंसा है, किसी के लिए गलत संकल्प भी करना, तो आप करते हो तो उसके मन में आपका संकल्प पहुंचता है, कहीं ना कहीं टकराएगा, जाएगा वो, तो वहां से भी उसके भी अंदर आएगा। तो अगर आप अच्छे प्रश्न ज्ञान पूछते हो, मुरली के पॉइंट सुनाते हो, उसके अंदर भी आएगा, हां मैंने भी मुरली सुनी थी, बाबा ने आज ये कहा, उसके मुख से भी आदत डालो। शरीर के द्वारा हम कर्म करते हैं, लेकिन ये ईश्वरीय विश्वविद्यालय में ये कर्म जरूरी है जो हम नहीं करते हैं, है ना। तो ज्ञान सुनते हैं, आपस में मिलते हैं, भी बात भी करते हैं। देखो आज आप इतने भाई भाई ने माताएं हैं, किसी ने किसी को मुरली पॉइंट सुनाया, बात तो किया, मुंह मौन तो नहीं था, किसी का मौन रहा नहीं, बोला तो जरूर, कर्म भी किया, लेकिन आत्मा ने रूहानी सेवा किया, एक दूसरे को मिले। आज बाबा ने ये कहा, तो क्या रूहानी सत्संग है? ये कर्म सारे कल्प में सिर्फ संगम पर ही होता है, बाकी समय रामायण पढ़ेंगे, गीता सुनेंगे सुनेंगे, यहां ज्ञान जागृत रहना चाहिए। अगर आपके स्मृति में है तो अपने आप वाणी में आएगा, अपने आप दृष्टि भी उसी प्रकार जाएंगी, अपने आप कर्म भी ऐसे होंगे, अपने आप कर्म स्वभाव संस्कार परिवर्तन नहीं होता है, परिस्थिति तुरंत आएंगी, तुरंत बुद्धि को याद रहता है, नहीं आज बाबा ने ये कहा था दृष्टि जानी नहीं चाहिए, नहीं तो दृष्टि को आधे कल्प से समय संस्कार पड़ा हुआ है, वो संस्कार अपने आप नहीं जाएगा, ज्ञान सुनने से नहीं जाएगा। जैसे कपड़े पर दाग लगा हुआ है, पानी में डालो अपने आप जाएगा नहीं, साबुन से घिसना पड़ता है। तो ये जो ज्ञान सुना, ज्ञान का प्रयोग अपने ऊपर करना पड़ता है, अपने स्वभाव संस्कार पता चलता है, मेरी दृष्टि जाती है, हाँ मन बुद्धि के जरिए आज बाबा ने कहा था ऐसा नहीं देखना चाहिए, तो तुरंत समझाएंगे तो हटा सकते हैं। समझ ही नहीं है, जो पहले संस्कार है वही काम करेंगे ना, तब ज्ञान चाहिए, तब ज्ञान के बिगर गति सदगति नहीं है ना, गति सदगति तो होना चाहिए, नहीं तो दुर्गति कैसे होते, पुराने स्वभाव संस्कार के अनुसार वही चाल चल रही है, देखना वही दृष्टि है वही बोल है, परिवर्तन हुआ? ज्ञान सुनते रहो नहीं होगा, ज्ञान सुनने के बाद अपने ऊपर उसका प्रयोग करना चाहिए, एक ही करो, बहुत नहीं कर सकते, रोज एक एक बूंद भी ले लो, भगवान के एक बूंद के प्यासे हैं, अगर एक एक बूंद लेते जो एक एक 29 दिनों में 30 मुरली के पॉइंट आपके आचरण में आते हैं। और जितना आप औरों को सुनाते हैं ना, तो देखना आपके अंदर अपने आप विचार चलता है, अरे मैंने इसको कहा, हमने नहीं किया, हमने इसको कहा, उसको भी कहा, लेकिन मैंने नहीं किया, क्योंकि बार बार आपने रिपीट किया तो अपने को खाता है। तो अपने आप चिंतन चलता है, ये कैसे करो, इसके लिए क्या करो, मैं तो ऐसे बैठो आप सुनो, अपने आप चिंतन नहीं होता है, गलत बातों का चिंतन होता है। देखना अच्छे मुरली के पॉइंट के पर चिंतन नहीं चलता है, क्योंकि बुद्धि के अंदर आदत पड़ी हुई है। व्यर्थ बातों का, व्यर्थ चीज देखते हो उसका अंदर गहरे तक जाएंगे, ये क्यों, ये क्या, ये कैसे, ना चाहते हो, आदत ही है, लेकिन ये चलाना पड़ता है। तो हमने देखा सहज तरीका है, कठिन कठिन काम नहीं करो, जो नहीं हो सकता है, क्योंकि आत्मा की बैटरी इतनी कमजोर है, कर नहीं सकते। एक घंटा योग में बैठो, नहीं, बैठते ही देख लो 5-10 मिनट के बाद नींद आ जाती है, क्योंकि चलता नहीं है, मन चलाओ नहीं चलता है, आदत नहीं है। अब यहां बैठे, घर में भी संसार में रहते हो, वहां आदत नहीं है। अगर जिसके अंदर संसार कहीं भी रहो, अगर आदत है कहीं भी बैठेगा आराम से बैठ सकता है, नहीं तो बैठते आंखें बंद दूसरे विचार। तो कम से कम इस वातावरण में आने के बाद बाबा ने कहा, अगर गलत विचार भी करते हो, आते विचार आप नहीं करते हैं, तो भी ये भी बहुत बड़ा पाप है। वातावरण में क्या फैलाया आपने, हाँ, आवाज बहुत धीमे गति से जाता है, संकल्प बहुत तीव्र गति से पहुंचते हैं। आपने देखा पानी में एक पत्थर डालो, तरंग निकलते हैं ना, तो जाते रहते ना, किनारे तक जाते रहेंगे तरंग, तो ये भी आपका संकल्प कहीं ना कहीं पहुंचाएगा, ये भी आपने एक बार डाला तो तरंग निकलते हैं, तक किसी ने किसी को पहुंचता है। दूसरे के मन में गलत विचार क्यों आए, नहीं तो ऐसे शांत पवित्र वातावरण है, सभी योग में बैठे हैं, आप भी जानबूझ के नहीं करते हैं, आदत बनी हुई है, खाली मन। तब कहा कम से कम योग में बैठते ही 15 मिनट बैठो, आधा घंटा पहले आते समय सोच के आओ, मुझे कितना मिनट बैठना है, हर चीज प्लानिंग से होना चाहिए। नहीं जब आए अच्छा लगा बैठे, नहीं तो बीच में उठ गए, आप उठे कितने लोगों को डिस्टर्ब बताए, बीच में से क्रॉस करके जाते हो तो आप अपना सोचते हो, आपके कारण औरों को भी डिस्टर्ब होता है, औरों की नजर जाती है, कितने लोगों को डिस्टर्ब किया। तो अंदर घुसते समय भी कहां जा रहे हम, हाँ कितना समय मेरे पास है, कितना मिनट बैठना चाहिए, प्लान करके बैठो। और बैठने के बाद क्या करना चाहिए, लक्ष्य कहा, बैठने के बाद क्या करना है मुझको, आज बाबा ने क्या कहा था, वो पहले से तैयारी चाहिए, सोचते सोचते आ जाओ। और यहां बैठते ही आज बाबा ने कहा बैटरी को चार्ज करना चाहिए, परम धाम तक जाना चाहिए, सर्वशक्तिवान शिव बाबा जहां है वहां तक पहुंचना चाहिए। तो उसके लिए क्या करना चाहिए, विचार चलेगा, जो जो आपने पहले सुना हुआ है, स्मृति के अंदर है, उसका उपयोग करना चाहिए। फिर सारा दिन में कभी कोई मिलता है, किसी से बात करो, कोई नहीं, अकेले हो आप, सब्जी काट रहे हो, खाना बना रहे हो, हाँ इधर उधर चलते हो, कोई नहीं है, तो भी बार बार अपने के जेब में है, नहीं तो याद ही नहीं था, निकालो पढ़ो, आज क्या कहा था बाबा ने, मन को काम देना चाहिए, नहीं तो मन इधर उधर जाता है, न चाहते हुए व्यर्थ विचार आते हैं, चाहते नहीं आप, क्योंकि उसके ऊपर नियंत्रण नहीं है, बेलगाम घोड़ा जैसा है, तो उसको काम देना पड़ता है। फिर सिर्फ चिंता नहीं करते रहो, वो भी नहीं होता है, कोई अगर आपके मन में अच्छे विचार चल रहे हैं ज्ञान का, सामने कोई मिला पहचान वाला, ओम शांति के, आपके देखो उस तुरंत उससे बात करो, देखो आज बाबा ने एक बहुत अच्छी बात सुनाई थी। अगर ये आदत डालो किसी को आज के मुरली के पॉइंट सुनाना है, मेरे मुख से ज्ञान रतन निकलना चाहिए, तब बाबा ने कहा ज्ञान रतन दान करो, ये अविनाशी दान है, किसी को वस्तु और कुछ दे सकते हो आप, तो ज्ञान रतन देना चाहिए। और समय पर किसी को मिलता है तो उसके मन में और कुछ चल रहा था, तो वो आपको ये याद करेगा, अगर समय पर देखो कभी उसको कुछ समझ में आया नहीं, आपको ही पूछेगा, भाई जी आज एक अच्छा पॉइंट बताओ, अब उसको पता है आपके पास क्या मिलेगा, और कोई मिलेगा तो वो क्या सुनाएगा, इधर उधर की बात सुनाएगा, किसके पास जाएगा। तब का शुभ समाचार दे दो, साधारण रूप में बहुत बड़ी बड़ी करना चाहिए, अशरीर बनो विदेही बनो, ये अपने आप नहीं होने वाली चीज है। शरीर में इतने सालों से जन्मों से रहते हुए शरीर का विचार ही नहीं, आधा घंटा बैठो अशरीरी बनो, बाबा कहता है बच्चे अशरीरी बनो विदेही बनो, तो उसकी पूर्व तैयारी चाहिए। तो सारा दिन में अगर आप ऐसे करते हो तब देखना, शाम को आके बैठते हो कोई भी इधर उधर के विचार नहीं, सब कुछ किया आपने, कर्म करते आए कि बार बार मन में विचार आए, सोने से पहले दिन में खाना खाया, खाना खाते समय पढ़ा एक पॉइंट, सोने से पहले पढ़ो, सोते चिंतन करते सो जाओ याद करते हुए, मन स्वच्छ है, मन को आपने खाली नहीं छोड़ा कि और किसी को देखा, कोई नहीं दिखाई देंगे ऐसे नहीं, जंगल में तो नहीं, संसार में है, हर एक प्रकार के व्यक्ति स्वभाव संस्कार है, अपने भी बहुत सारे विकर्म है, अपने भी बहुत कुछ है, तो वो नहीं जागृत हो तो मन को बार बार अच्छे विचार देते हो, तब कहा मन जीत जगत जीत। उसके साथ और एक भी चीज है, और भी आपका भाई जी कोई नहीं मिला, किसी को मुरली नहीं सुनाया, किसी पर देखा आंखों से दिखाई देता है, भाई जी को देखते बहन जी तो नहीं कहेंगे, भाई जी कहेंगे, दिखाई देने के बाद आपको पूछता है हवा एक श्वास के अंदर कौन सा हवा जाना चाहिए, अच्छा जाना चाहिए कि गलत जाना चाहिए, पता चलेगा आपको पूछ के जाएगा, नहीं आपको पता ही नहीं चलता दृष्टि कहां जाती है। तो उसके लिए भी बाबा ने एक अभ्यास बताया, बच्चे निरंतर योगी तो क्या है वो, दृष्टि भी किसी को देखते हुए भी उसका प्रभाव मेरे ऊपर नहीं पड़ना चाहिए, तो उसके लिए क्या करना चाहिए, आत्मा तो दिखाई नहीं देता है, किसी को देखो चमकता हुआ सितारा दिखाई देता है नहीं, तो दृष्टि में तो शरीर दिखाई देगा ना, माताजी दिखाई देंगी, भाई दिखाई देगा, वही दिखाई देगा ना, आत्मा दिखाई देता है नहीं, तो कैसे देखेंगे आत्मा को। तो तब बाबा ने एक व्यवस्था बताया, बच्चे एक डालो निरंतर, किसी को देखते ही कोई भी हो, एक आदत जैसे भक्ति में देखा माला चलती रहती हाथ में, इधर उधर देखते भी चलते भी रहते रस्ते पर, राम राम करते जाएंगे है ना, मुख से यहां मन से किसी को भी किसी पर भी नजर गई कोई भी हो, जानते हो नहीं जानते हो, शिव बाबा ये आपका बच्चा है, इसको शांति की शक्ति दे दो, शिव बाबा इसका कल्याण करो, शिव बाबा इसको सद्बुद्धि दे दो। अगर कोई खाली है मुरली का पॉइंट सुनाओ चिंतन करो, नहीं कोई सामने मिला अपना व्यक्ति जिसको जानते हो उसको मुरली के पॉइंट सुनाओ, जो नहीं जानते हो उसके ऊपर भी दृष्टि जाती है, हर एक प्रकार के उनको देखते ही मन को काम देके रखो, इनको देखते मुझे क्या करना चाहिए, उनके विचार, मन खाली नहीं रहता है, किसी न किसी के प्रभाव में आते हैं, दिखाई देगा, और हरेक की चलन हरेक का व्यवहार अलग अलग है, ऐसे नहीं सभी बाबा के जैसे सात्विक नहीं है, किसकी जैसी दृष्टि किसी किसका कैसा कर्म, तो भी मुझे क्या करना, मुझे अपने को बचाना है, औरों को परिवर्तन करने नहीं जाना, अपने को बचाना है, मेरे ऊपर उन परिस्थिति व्यक्ति किसी का प्रभाव मेरे ऊपर ना पड़े, तो कैसे बचाएंगे, तो उसका तरीका किसी पर नजर गई कोई भी हो देखते आदत डालो, शिव बाबा ये आपका बच्चा है इसका कल्याण करो, इसको सद्बुद्धि दे दो, इसको शांति की शक्ति दे दो, है ना, ये दुआएं देते चलो। बाबा भी याद आया, किसी को देखते ही मन में अच्छे विचार भी आया, है ना, सिंपल चीज है, सहज क्या कर सकते हम, क्योंकि बाबा के बच्चे अच्छे पढ़े लिखे नहीं, साधारण है, साधारण रूप से जाओ। तब बाबा ने कहा गरीब बच्चे चाहिए वही पुरुषार्थ कर सकते हैं, जिनको किसी प्रकार का अगर नशा है तो वो पुरुषार्थ नहीं कर सकते है। तो संगम पर गरीब बनना साधारण बना ये बहुत बड़ा भाग्य की निशानी। आज भी बाबा ने कहा कौन से बच्चे भाग्यवान बच्चे हैं, भाग्यशाली बच्चे है, हाँ तभी देखो माताएं तभी एक एक दो दो महीने सेवा करने बाबा के घर में आते हैं, अगर अपना बच्चे पोते घर ये वो आता, घर को बंद नहीं करना चाहिए, लॉक नहीं लगाना, चोरी हो जाएगा, मेरा है, ऐसा कहते रहे इधर पहुंचते थे नहीं, अपना करके वहां रहते थे नहीं, मेरा कुछ भी नहीं है ना। जो निर्बंधन है, जिसको कोई बंधन नहीं, कोई फिक्र नहीं है, है सब कुछ तो भी नष्ट मोहा, तो ये अगर समझ के चलते हो तो अपना भाग्य बना सकते हैं। देखो एक एक महीना दो दो महीना आके तन मन लग रहा है ना, तन किसके, नहीं तो किसके सेवा में लगता था, दो चार लोगों के सेवा में लगता था घर में, सेवा तो उधर भी रोटी बनाएंगे सब्जी काटेंगे, यहां भी, यहां आपने जो सब्जी काटी रोटी खाई बनाई, कितने लोगों को, कितने लोगों ने खाया, बाबा को भी भोग लगाया है ना, कितनी हुई आपका तन से जो कर्म हुआ उसका कितना फायदा हुआ। तन तो, तन की तो सेवा होती घर में दो चार लोगों की करते थे तो ये का, और उसके साथ सेवा करते करते अगर शुभ बाबा की सेवा, बाबा से बात करते करते, ज्ञान का चिंतन करते अगर सेवा करते हो, अहो सौभाग्य, और उसको का श्रेष्ठ कर्म हुआ। वहां भी रोटी बनाते थे, यहां भी बना रहे हो, हाँ यहां उधर चार बनाते थे, यहां सौ बनाया, लेकिन उसके साथ अगर मन में अच्छे विचार करते हुए, बाबा को भोग लगने वाला है, शुभ बाबा ने ये कहा था, आज बाबा ने मुझे ये पढ़ाया था, तो बाबा का ज्ञान का चिंतन करते करते अगर कर्म करते हो तो वो क्या हो गया, श्रेष्ठ कर्म हो गया। कदमों में पदम समा सकते हो, बना सकते हो, भाग्य बना सकते हो, अपना पदम पति बन सकते हो। नहीं साधारण कर्म तो कर ही रहे, ऐसा नहीं कोई नहीं कर रहे, लेकिन उसको श्रेष्ठ बनाना वो भी आपके हाथ में है। कैसे कर सकता है कि कठिन है, करते हैं हाँ, नहीं तो बहुत कुछ करना चाहिए, करने के लिए हम देखना चाहिए मेरी योग्यता क्या, मैं क्या कर सकता हूं, करने के लिए बहुत कुछ ज्ञान है, लेकिन सभी आज के संसार में आज के वातावरण में कर नहीं सकते हैं, चाहते भी नहीं होता है, फिर पश्चाताप होता है ज्ञान सुनने के बाद, अरे ये होता ही नहीं, गुस्सा तो जाता ही नहीं है, बुरे स्वप्न खत्म होते ही नहीं है, बुरी आदत जाती नहीं है, अपने आप को क्या करते रहते हैं, ग्लानि करते रहते हैं। तब का जो हो सकता है साधारण कर्म करने से को धीरे 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 आदत बनेगी, एकदम उन्नति नहीं होती ना, भले कितना भी ज्ञान चलते हो कितने सालों से भी, तो ये सदा के लिए चाहिए। एक मुरली के पॉइंट अपने पास, अगर आप तो शुरू में लिखने लिख के रखो, बाद में लिखने के जो आदत बनेंगी, कभी भी किसी ने पूछा, और उसमें भी एक देखना आप, एक दिन प्रयोग करके देख लो, सुनना, सुना आपने मुरली अच्छी तरह से ध्यान से सुना, बाहर जाते ही किसी को पूछना, भाई जी आप भी सुन रहे थे बताओ क्या सुनाया था, हाँ दूसरा देख लो, वो भी नहीं सुना सकेगा, दूसरा देखो कोई सुनता है लिखता भी है उसको भी पूछ के देखना, भाई जी आपने क्या मुरली के पॉइंट सुना लिखा, वो डायरी खोलेगा हाँ, तो भी नहीं होगा, सुना भी लिखा भी नहीं, जब तक आप अपने मुख से वर्णन नहीं करते हो। सुनो लिखो, बाहर जाते ही अपने मुख से किसी न किसी को एक मुरली के पॉइंट सुनाओ, देखो रात तक आपको याद रहेगा मैंने सुनाया था, अगर रात को किसी ने आपको पूछा तुरंत आप बताएंगे, कर्म हो गया ना, सुना लिखा तो भी याद नहीं रहती है, वर्णन मुख से निकलना चाहिए, और जितने दफा निकालते हो जितने सुनाते हो पक्का संस्कार हो गया। तब बाबा कहता है बच्चे अविनाशी संस्कार बनाओ, ज्ञान के अविनाशी बनाओ, समझ में आया, ठीक है, सहज तरीके से जाओ। ओम शांति। तो कल से क्या करेंगे, हर एक 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 हीरा देते जाओ, अपने पास जमा करके रखना नहीं, लिख करके रखना नहीं, दान करो।